प्रातः क्लास चल रहा था, दो ग्यारह 1966 बुधवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, ये भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य ही दिखाया जाता है, मनुष्य सृष्टि में ब्राह्मण होते हैं सर्वोत्तम। और ब्राह्मणों में भी अव्वल नंबर है पहला ब्राह्मण, जिसे कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट मनुष्य सृष्टि रचते हैं, क्योंकि समझा जाता है क्राइस्ट के फॉलोअर्स इस 500 करोड़ की सृष्टि में दो सौ ढाई सौ करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो क्राइस्ट ही मनुष्य सृष्टि रचता होगा, ऐसे भी नहीं कि महात्मा बुद्ध बौद्ध बौद्धियों को रचा या कोई भी धर्म पिता ने अपने कोई भी धर्म के फॉलोअर्स को रचा। तो ये कोई सारी मनुष्य सृष्टि की रचयिता नहीं है, और न उन धर्म पिताओं के द्वारा भगवान ने सृष्टि रची, क्योंकि भगवान तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, अर्थात हेवन रचने वाला। मनुष्य तो भिखारी होते हैं, भगवान तो एवर प्योर है, वो भिखारी मनुष्य सृष्टि कैसे रचेगा। तो ये तो भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, यानी शुरुआती जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य प्रजा है, उसका दो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बीज उसी के द्वारा मनुष्य सृष्टि होती है, और और उस मनुष्य शक्ति में जो श्रेष्ठते श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों की रचना की जाती है। जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ करके ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। तो जब ब्रह्मा से सृष्टि रचेंगे तो ब्राह्मण ही रचेंगे। जैसे विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव कहे जाते हैं। बच्चे के अर्थ में, रचना के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है ना। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचेंगे। तो मीठे मीठे बच्चों को देखो, ये बात भी बहुत अच्छी बुद्धि में बैठ गई है कि बरोबर रचने वाला पहले पहले बाबा है। जिसे कहा जाता है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। क्योंकि रचयिता साकार होना चाहिए और साकार की रचना भी साकारी होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा साकार ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। कौन रचते हैं? है प्रजापिता रचते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं? है प्रजापिता ब्रह्मा मीडिया है या रचयिता है? मीडिया है। रचने वाला कौन रचयिता है? है निराकार शिव साकार में प्रवेश करके बाबा बनते हैं। निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। नहीं तो शिव तो बिंदी है, उनको अपने हाथ पांव शरीर तो है ही नहीं, वो तो सदैव कर्म बंधन से न्यारा है, तो देह के बंधन में कैसे आवेगा? तो उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और वो शिव मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में प्रवेश करके बाबा कहा जाता है, शिव बाबा। तब कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रची। तो इस रचना के क्रम में पहले पहले किस आत्माओं को रखें? है ब्राह्मण को रखें, ब्रह्मा को रखें, परंतु ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। ब्रह्मा को मुख भी चार या पांच दिखाए जाते हैं, तो चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है। तो उनमें कोई तो अव्वल नंबर होगा। जो अव्वल नंबर है उसी को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह अव्वल दीन, ऊंचे से ऊंचे अल्लाह ने अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो वो ऊंचे से ऊंचे पहले पहली आत्मा कौन हुई, निराकार या साकार है? साकार हुई। साकार तो निमित्त मात्र हुआ, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो पहली पहली आत्मा तो बाबा, कौन सा बाबा? शिव बाबा। वो ब्राह्मण षष्ठी रचते हैं। पीछे उन ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। क्या डबल मशीनरी हो गई? पहले क्या करते हैं, हैं मनुष्यों को जो शूद्र बन चुके हैं, विकारी और विविचारी बन चुके हैं, उनको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और फिर बाद में उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। तो ये भारत में ही विराट स्वरूप का चित्र बन सकता है। क्यों, दूसरे देशों में क्यों नहीं बन सकता है?
भारत में बारह माही बाबा,
क्योंकि बाप भारत में ही आते हैं। भारत नाम क्यों दिया है? भारत अर्थात रत लगा हुआ, काहे में लगा हुआ, भा माने रोशनी, काहे की रोशनी, ज्ञान की रोशनी में सदैव लगा हुआ। जब भगवान बाप आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, तो भी सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। ये किसकी पहचान? अरे किसमें आते हैं? भारत में आते हैं। तो जिसमें आते हैं उसकी ये पहचान है। क्या सारा जीवन हाँ ज्ञान में लगा रहता है, बुद्धि रूपी पेट को भरने में लगा रहता है। क्या जो स्थूल पेट है उसके लिए स्थूल धंधा धोरी की बातों में नहीं, काहे में लगा रहता है? बुद्ध रूपी पेट को भरपूर करने में लगा रहता है। और फिर ब्राड ब्रह्म में वो आत्मा जब आती है तो ब्राड ब्रह्म के जो चार सीन हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उनमें भी दो युगों में तो वो लगातार जो पक्के ब्राह्मण देवता हैं, उनके साथ ही आत्मिक स्मृति में लगी रहती है। आत्मा तो स्वयं रोशनी स्वरूप है, अगर आत्मा रोशनी स्वरूप न होती तो जब मनुष्य मरता है, शरीर छोड़ता है, तो शरीर में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अंग आंखें हैं, उन आंखों में से रोशनी कहाँ चली जाती है? रोशनी रहती है, आंखें बटन हो जाती हैं, या रोशनी गुम हो जाती है? इसे साबित होता है कि हमारी आत्मा रोशनी स्वरूप है, जिसकी रोशनी इन आंखों से निकलती है। परंतु जो देव आत्माएं होती हैं द्वापर सतयुग त्रेता में, वो अपनी रोशनी स्वरूप आत्मा को याद रखती हैं, उनको कभी विस्मृति नहीं होती है। और आधा कल्प के बाद, सतयुग त्रेता के बाद, जिस सतयुग त्रेता आधा कल्प को शास्त्रों में ब्रह्मा की रात बताया है, उस ब्रह्मा की रात में आत्म की स्मृति भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? हैं? क्योंकि जो सतयुग त्रेता रूपी स्वर्गीय सृष्टि थी, वो तो निराकार भगवान की रचना है, जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहता है। इस पतित दुनिया में आता है, अंतिम कलयुगी सृष्टि में आता है, और पतित से पतित तन में आता है, तो भी उस सुप्रीम सोल सदैव आत्मिक स्मृति में रहती है, कभी भी देहधारी बनकर नहीं रहती। और द्वापर युग से क्या होता है? जो भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं आते हैं, वो सब देवानी देहधारी देह की स्मृति में आते हैं। आत्मा की उन्हें स्मृति नहीं रहती, देह को महत्व देते हैं। देहवान को बढ़ाने वाली कर्मेंद्रियों को महत्व देते हैं। कर्मेंद्रियों में भी जो सबसे प्रबल इंद्रिय है, कामेंद्रिय, उस कामेंद्रिय का सुख भोगने में लिप्त रहते हैं, और जैसा बाप होगा वैसे ही बच्चे भी होंगे, जैसा धर्म पिता वैसे उसके फॉलोअर्स। तो द्वापर युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है। देवताओं को तो अद्वैत कहा जाता है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। और ये देहधारी धर्म पिताएं जब आते हैं तो दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो मतें होती जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, हर बात में द्वैतवाद बढ़ता जाता है, दो से चार, चार से आठ। ऐसी स्टेज जब होती है तो दुनिया में झगड़े बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ने लगते हैं। इसलिए सत्य का ज्ञान किसी को नहीं रहता। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। तो ये देहधारी धर्म पिताएं जितने भी संख्या में बढ़ते जाते हैं, दुनिया में सत्य के बारे में अनेक मतें हो जाती, भगवान के बारे में अनेक मतें हो जाती, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो देवानी धर्म पिताएं जिस देह से पांच विकार पैदा होते हैं, देवान से ही विकार पैदा होते हैं, देह समझेंगे तो स्त्री पुरुष का भान आएगा। क्या अंतर होता है स्त्री पुरुष में, वो भी भान आएगा। तो काम विकार पैदा हो गया, लेकिन ये काम विकार ऐसी लगातार बढ़ने वाली आग है जो बढ़ने के अलावा कभी समाप्त ही नहीं होती। गीता में इसे कहा गया है दुष्पूर्ण, इसका पूरा होना असंभव। ऐसी आग है तो जब मनुष्य की काम की आग पूरी नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेश होने लगते हैं। और जब क्रोध बहुत बढ़ जाता है तो क्रोध में आकर मनुष्य मूर्ख जैसे काम करता है। देखा होगा कोई कोई क्रोधी ऐसे होते हैं क्रोध में आकर अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगते हैं। इसलिए गीता में लिखा है क्रोधात भवति सम्मोह संपूर्ण मोहतात मूढ़ता आती है। मतलब है कि पांचों प्रकार के विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कैसे पैदा होते हैं? देवान से पैदा होते हैं। और ये देवान कब से आता है? द्वैतवादी द्वापर युग से आता है। जब दूसरे दूसरे प्रकार के धर्म पिताएं सृष्टि पर आते हैं, देवानी धर्म पिताएं सृष्टि पर आते हैं, जो आत्मा को जानते ही नहीं, तो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स सारे के सारे भौतिकवादी पंचभूतों से बने हुए इस शरीर को मान्यता देते हैं बहुत, और आत्मा को जानने न जानने के कारण उतनी मान्यता ही नहीं दे पाते। तो इस द्वैतवादी द्वापर युग से जैसे जैसे धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते जाते हैं, इस सृष्टि रूपी मकान की टाइम टू टाइम मरम्मत करना चाहते हैं, समझते हैं कि मरम्मत करने से मकान नया हो जाएगा, लेकिन मकान तो और ही क्या होता जाता है और ही पुराना होता जाता है। विकार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ते हैं। भौतिकवादी दुनिया में इन विदेशी इन विधर्मी धर्म पिताओं के द्वारा भौतिकवाद को बहुत बढ़ावा मिलता है। और इनकी संख्या इतनी जास्ती तादाद में बढ़ती है, ज्यादा विकार बढ़ने के कारण ज्यादा विकार बढ़ेंगे, खासकर काम विकार बहुत बढ़ेगा तो आबादी घटेगी या बढ़ेगी? आबादी घटने का नाम निशान नहीं। और जितनी जितनी संसार में आबादी बढ़ती जाती है उतनी अशांति बढ़ेगी या घटेगी? अशांति भी बढ़ती जाती है। जबकि भगवान बाप आकर बढ़ाते हैं, बताते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, शांति तो गले का हार है, जब चाहे पहन लो और विस्मृति हो जाने पर जब चाहे उतार दो, है अपने हाथ की बुद्धि रूपी हाथ की बात। देह समझने से विकार बढ़ते हैं, विकार बढ़ने से अज्ञान अंधकार बढ़ता जाता है। एक भारत देश ही ऐसा है, दुनिया में इतने सैकड़ों देश बन चुके हैं जिनके बीच एकमात्र भारत देश, जो ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, अन्य देशों अन्य धर्मों अन्य धर्मावलंबियों के मुकाबले ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ज्यादा करता है, परंतु भारतवासी अन्य देशों से अन्य धर्मों से टाइम टू टाइम प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो करके उनकी प्रजा बनते रहे हैं, आधीन होते रहे हैं, या नहीं हुए हैं? हैं? आधीन होते रहे हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण ज्ञान सौ % ज्ञान सभी भारतवासियों में होगा या थोड़े से भारतवासियों में रहेगा? हैं? थोड़े से भारतवासी होते हैं कि जब इस मनुष्य शक्ति पर कलयुग के अंत में भगवान बाप निराकार आते हैं और ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्यों का उच्चारण करते हैं, जिसे वेद वाणी कहा जाता है, विद माना जानकारी, वेद सच्चाई की जानकारी है, इसलिए ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। उन ब्रह्म वाक्यों को, उन ज्ञान के सूत्रों को या भगवान की दी मत को थोड़ी सी आत्माएं निकलती हैं, बहुत थोड़ी, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में पूरा पूरा उतारते हैं, जिन्हें भारतीय परंपरा में अष्टदेव कहा जाता है, आठ दिग्पाल कहा जाता है, आठ दिशाओं को पालने वाले, सारी मनुष्य सृष्टि के पूर्वज कहा जाता है, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। क्या स्थूल पेट से जन्म लेने वाले, फिर बुद्धि रूपी पेट से जन्म लेने वाले, नाम ही है ब्रह्मा। चाहे नंबर वार ब्रह्मा हो, चाहे अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो, परम ब्रह्म। उनसे अटैच्ड पूरे ज्ञान को जो धारण करते हैं वही अष्टदेव। भगवान के सृष्टि पर आने के समय से लेकर अर्थात 5000 वर्ष के इस मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा की शूटिंग के पीरियड से लेकर लगातार 5000 वर्ष तक सच्चाई कहो, सत्य ज्ञान कहो, स्वधर्म कहो, स्व माने आत्मा, धर्म माने धर्म, धर्म आत्मिक स्थिति की धारणा में दुनिया के और धर्म संप्रदायों और देशों के मुकाबले और कन्वर्टेड भारतवासियों के मुकाबले सदैव ज्ञान की स्थिति में स्थित रहने वाले रहते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में भी यहां तक सच्चाई पर अडिग रहते हैं कि जब से द्वैतवादी युग द्वापर युग से शुरू होता है विधर्मी और विदेशी धर्म पिताएं अज्ञानता फैलाते हैं संसार में और अज्ञानता के आधार पर हिंसा फैलाते हैं। खासकर भारत में आकर के बड़े बड़े युद्ध करते हैं हिंसक, तब वो सत्य पर डटे रहने वाली आत्माएं उन विदेशियों आक्रांताओं विधर्मियों के मुकाबले झुक कर रहती हैं या डट कर मुकाबला करती हैं। क्या करती रही है? मुकाबला किया। इसके लिए गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम सेय परधर्मो भयावह। अपने आत्मिक धर्म में, अपने ईश्वर के द्वारा स्थापित किए हुए धर्म में स्थित रह करके मर जाना अच्छा है, परंतु दूसरे का धर्म जीते जी स्वीकार करना अच्छा नहीं है, जन्म जन्मांतर भयभीत करने वाला है। इसलिए संगम में आए हुए भगवान बाप की जो आज्ञाएं हैं, जो मत है, उस पर जिन भारतवासियों ने ध्यान नहीं दिया, जिन ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया, वो ही नीची कुरी के ब्राह्मण द्वापर युग से विधर्मियों में कन्वर्ट होते रहते हैं। और कन्वर्ट होकर के जन्म जन्मांतर विदेश में जाकर के दुख भोगते। जो विदेशी आक्रांताएं कन्वर्ट होकर के ले गए, कन्वर्ट करके वो उनको राजा बना के बैठाएंगे या दास दासी बना के रखेंगे?
तो देखो
भारतवासी कहे जाने वाले जो ढेर की ढेर तादाद में कन्वर्ट होते हैं उनकी कितनी दुर्गति होती है। और उन्हीं आत्माओं के द्वारा सोल वर्ल्ड से आने वाले धर्म पिताएं अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं, भारतवासियों का आधार लेकर के। इसलिए भारत को मातृ देश कहा जाता है। दूसरे देशों को मातृ देश नहीं कहते हैं, मातृ देश इसलिए कहा जाता है कि भगवान बाप जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्म माने बड़ी से बड़ी, मां माने मां। ये दुनिया की बड़ी से बड़ी माताएं सहन शक्ति का आगार माताएं कौन से देश में जन्म लेती हैं? है भारत देश में जन्म लेती है। उनमें मना ब्रह्मा नामधारियों में चार ब्रह्मा के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। वो टोटली माताओं का पार्ट बजाती हैं। प्रैक्टिकल जीवन में सहन शक्ति का आधार माता बनकर के रहती है। उनमें मुख्य है दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पत्ता बनती है। उसको फॉलो करने वाली माताएं अर्थात ब्रह्मा की सहन शक्ति को फॉलो करने वाली माताएं भारत में ही मिलती हैं। दूसरे देशों में नहीं मिलेंगी। दूसरे देशों में सहन करने के मुकाबले क्या करती है? परिवार में जो भी भांति होते हैं, पति हो, सासू माँ हो, ससुर हो, बच्चे हो, उनका सहन करती हैं या डाइवोर्स दे करके दूसरा घर बना लेती हैं? बिल्कुल सहन नहीं करती। और भारत में तो उन माताओं कन्याओं का मिसाल ही गऊओं से दिया जाता है। जो भारत की गऊएं जीवन में माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं जीवन भर उसी खूंटे से बंधी रहती है। इतना सीधा साधा पार्ट बजाती है। अब अज्ञान काल कहो, द्वैतवादी युग कहो, देहवान वाला युग कहो, भारतवासियों में जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण देवताएं हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है या नॉन कन्वर्ट वालों की संख्या ज्यादा होती है? कन्वर्ट होने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। इसलिए दुनिया में और धर्म वालों की संख्या बहुत हो गई और भारतवासी जो पक्के हैं सत्य रूपी वृक्ष में सीधे तने के लिए के सहारे सहारे ठीक ऊपर को जाते हैं, न दाई ओर के धर्म में कन्वर्ट होते जैसे बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म आदि, और न बाई ओर के धर्म में कन्वर्ट होते जैसे इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम आदि धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होते। भगवान की नजरों में ऊंचे जाते हैं या दुनियावी मनुष्यों की नजरों में ऊंचे जाते हैं? हैं? बताओ, भगवान की नजरों में ऊंचे जाते हैं। इसलिए वो भगवान की नजरों में ऊंची जाने रहने वाली आत्माएं जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उन आत्माओं को पहले कलेक्ट करेंगे या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं जिन्होंने भारत को जन्म जन्मांतर धोखा दिया? विदेशियों को सपोर्ट किया, विधर्मियों को सपोर्ट किया, भारत को नीचे गिराया। भगवान उनको सपोर्ट करेगा या भगवान की बात जन्म जन्मांतर मान करके और विदेशी हिंसक आक्रांताओं के सामने मुकाबला किया, जन्म जन्मांतर खून बहाए? दुख को गले लगाया? भगवान उनको सपोर्ट करेगा है? अवसरवादियों को सपोर्ट करेगा या जिन्होंने अवसर की ताक नहीं देखी, जहां देखी तबा बरात वहीं बिताई सारी रात? देखा यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, शादियां हो रही हैं, वहीं भीड़ भाड़ में घुस गए, लड्डू पेड़ा मलाई खाई, फिर दूसरे दिन देखा कि वहां मलाई उड़ रही है तो वहां घुस गए। ऐसे ही ये विश्वासघाती भारतवासी वो धर्म के पक्के हैं या कच्चे हैं? हैं? कच्चे हैं। इसलिए अवसरवादी हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। जहां अल्पकालीन सुख दिखाई पड़ता है वहीं घुस पड़ते हैं। और भगवान तो सच्चा है, सदैव सच्चा है, सच्चों को ही सपोर्ट करता है। तो फिर नंबरवार नौपुरी के ब्राह्मणों को इकट्ठा करेगा या पहले अंतिम कुरुई के कच्चे से कच्चे ब्राह्मणों को इकट्ठा करेगा? है अवसरवादियों को इकट्ठा करेगा? हाँ, जो भगवान बाप को जन्म जन्मांतर भगवान बाप की वाणी को सपोर्ट करने वाले रहे, गीता ज्ञान को सपोर्ट करने वाले रहे, उनको ही आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उनके प्रति विशेष ध्यान देता है, नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाता है, इस सृष्टि की सच्चाई सुनाता है। चारों युगों का जो ड्रामा है उसमें सच्चाई क्या है वो सुनाता है, अपने बारे में सच्चाई सुनाता है। और नंबरवार एक एक आत्मा के अनेक जन्मों की हिस्ट्री खोलता है ज्ञान के आधार पर। सभी आत्माओं को अपनी अपनी स्थिति का, जन्म जन्मांतर की अपनी अपनी कमजोरियों का पता चलता है और विशेषताओं का भी पता चलता है। भले भारतवासी कोई भी धर्म में कन्वर्ट होकर के गए हो तो भी परमधाम से सुप्रीम एबोर्ड से उतरने वाली, सोल वर्ल्ड से उतरने वाली जो ढेर की ढेर आत्माएं हैं, उन पक्के विदेशियों और विदेशियों के मुकाबले श्रेष्ठ आत्माएं हैं या भ्रष्ट आत्माएं हैं? है? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्म वालों के मुकाबले जो अपने धर्म के पक्के रहते हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते, अपने ही धर्म पिताओं को फॉलो करते हैं, भारतवासियों को फॉलो नहीं करते, देवता बनते ही नहीं, द्वापर युग से ही सृष्टि पर आते हैं, उन मनुष्य आत्माओं के मुकाबले कन्वर्ट होने वाले भारतवासी आत्माएं श्रेष्ठ हैं या निष्कृष्ट हैं? हैं? धीरे से बोलते
हैं,
श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान बाप की नजरों में भगवान बाप के छोटे बच्चे हैं। जैसे छोटे बच्चे अबोध होते हैं, गहराइयों को जल्दी नहीं समझते हैं, बुद्धि का उतना विस्तार नहीं होता है, वो आत्माएं भगवान बाप के आने के पीरियड में शूटिंग पीरियड कहो, रिहर्सल का पीरियड कहो, रिकॉर्डिंग का पीरियड कहो, उस पीरियड में नंबर वार की लिस्ट में रह जाते हैं। और नंबर वार किस आधार पर होते हैं? कोई करोड़पति के बच्चे हों 10, कोई बड़ा बच्चा, कोई सबसे छोटा बच्चा। बड़ा बच्चा बड़ा होने के नाते माता पिता की प्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने के नाते ज्यादा पावरफुल बनेगा या कम पावरफुल बनेगा? हिस्ट्री में जो भी राजाएं हुए, उन राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई सौंपी या छोटे बच्चों को राजाई सौंपी? क्यों? क्योंकि बड़ा बच्चा अपने पूर्व जन्म से कुछ अच्छे कर्मों की पैदाइश लेकर के आया है। इसलिए बड़े घर में बड़ा बन करके जन्म लिया। और भारतीय परंपरा रही है, बड़ा भाई बाप समान माना जाता है। परंतु ये सारी परंपराएं कहां से पड़ती हैं? संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो भगवान बाप को ही सारी दुनिया नंबर वार फॉलो करती है, वाचा में, कर्मों में। इसलिए गीता में भी लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्। सब प्रकार के जो मनुष्य हैं वो नंबर वार मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। जो कर्म मैंने किए हैं उन्हीं कर्मों का आधार लेकर के चलते हैं। तो देखो, भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं शूटिंग पीरियड रिहर्सल के पीरियड में, जो बड़े समझदार बच्चे होते हैं, किस आधार पर बड़े बने? ज्ञान के आधार पर। शास्त्रों में भी लिखा है, ब्रह्मा ने जब मानसी सृष्टि पहले पहले रची तो मानसी सृष्टि से 4 बड़े ले बच्चे पैदा हुए। उन चारों बड़े बच्चों में सनत कुमार सबसे बाद में हुए, सबसे छोटे थे, लेकिन वो पुरुषार्थ के आधार पर सबसे बड़े ज्ञानी और बड़े योगी बन गए। उनको टाइटल मिला ज्ञानेश्वर और योगीश्वर। भगवान बाप बेहद का बाप है तो वो बच्चे भी बेहद के बच्चे थे। जैसा हद की दुनिया में होता है वैसा ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में भी होता है। वो योगीश्वर सनत कुमार के नाम पर भारत के धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ गया, क्योंकि हर धर्म का नाम धर्म पिता के आधार पर होता है कि देश के आधार पर होता है? अमेरिका में पैदा होने वालों को क्या अमेरिकन धर्म वाला कहेंगे? कहते हैं नहीं। रशिया में पैदा होने वालों को रशियन धर्म का कहते हैं नहीं। बुद्ध ने जो धारणाएं स्थापन की मानवीय धारणाएं, उन धारणाओं के आधार पर उनके धर्म का नाम बौद्ध धर्म पड़ा। क्राइस्ट ने जो ज्ञान की धारणाएं स्थापन की उन धारणाओं के आधार पर क्राइस्ट के फॉलोअर्स कहो उनको क्या कहा गया? क्रिश्चियन। और उनके धर्म का नाम क्रिश्चियन धर्म पड़ा। ऐसे ही मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद की धारणाओं को फॉलो करने वालों को मुस्लिम कहा गया और धर्म का नाम भी मुस्लिम धर्म कहा गया। लेकिन आज भारतवासियों को पता ही नहीं है, क्योंकि ढेर की ढेर तादाद में वो भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो जो दुनिया का वाइब्रेशन भारतवासियों में बनेगा वो ढेर की ढेर तादाद वालों का वाइब्रेशन बनेगा, या मुट्ठी भर पांडवों का बनेगा जो पंडा बाप के बच्चे होते हैं, है? किसका वाइब्रेशन बनेगा? पांडवों का बना है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए उनका वाइब्रेशन बन गया, उन्होंने समझ लिया के क्रिश्चियन धर्म का क्राइस्ट बाप है, बौद्ध धर्म का बुद्ध बाप है, मुस्लिम धर्म का मोहम्मद बाप है, लेकिन अपने धर्म का नाम भूल गए। विदेशियों ने आकर के, जो विदेशी आक्रांताएं सिंधु नदी पार करके भारत में आते रहे, उस सिंधु प्रदेश का नाम सिंधु देश रखा और सिंधु से बिगड़ करके हिंदू और हिंदू से बिगड़ करके हिंदुस्तान नाम पड़ गया और धर्म का नाम भी हिंदू धर्म कहलाई दिया। ये विदेशियों के प्रभाव से हुआ कि भारतवासी अपने धर्म को भूल गए, धर्म पिता को भूल गए और अपने धर्म ग्रंथ को भी भूल गए। अगर पक्का पक्का बुद्धि में होता कि दुनिया के सब धर्मावलंबी दुनिया की एक पुस्तक को ज्ञान की पुस्तक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सभी धर्म वाले मानते हैं कि दुनिया की ज्ञान से भरी पूरी पुस्तक धर्म ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता। उसमें जितना ज्ञान का भंडार है उतना दुनिया के कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं, लेकिन भारतवासी उसकी महत्ता को भूल गए। न भूले होते तो अनेक धर्म ग्रंथों का आलोड़न क्यों करते? किसको फॉलो करते हैं? अरे कौन से धर्म ग्रंथ को फॉलो करते हैं? अरे एक ही धर्म ग्रंथ को फॉलो करते, और शिव बाबा भी यही कहते हैं, एक से ज्ञान सुनेंगे तो जन्म जन्मांतर अभिविचारी देवता जैसा बन करके रहेंगे, देव आत्मा जैसे बन करके रहेंगे, और अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो विविचारी ज्ञान हो गया, जन्म जन्मांतर विविचारी धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे। अभी बताओ, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एक से ही सुनने की शूटिंग हो रही है कि एक दूसरे की कानाफूसी भी करते रहते हैं, हैं? ढेर के ढेर गुरु बनकर के बैठे हैं, कान में मंत्र फूंकते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा है, हाँ गुरुजी सत्य वचन महाराज ठीक है, कृपा निधान सत्य है, दया निधान, हम भी ऐसा ही सोचते थे क्या ऐसा ही होता होगा, बस जो सुना वो पक्का बुद्धि में बैठ गया, निश्चय हो गया, भगवान बाप की बातों पर अनिश्चय और देहधारी बातों पर निश्चय पैदा हो जाता है, एक बाप को बदल करके दूसरा बाप बना लेते, तो देखो ये कन्वर्शन 5000 वर्ष के ड्रामे में भी चलता है, और ये कन्वर्शन अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, सारी बातें समझ में आती है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर बंधे हुए हैं, संस्कार परिवर्तन शक्ति जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुई है वैष्णवी देवी, तब तक चाहते हुए भी जानते हुए भी मानते हुए भी कानाफूसी बंद नहीं कर सकते, ये विदेशियों की पहचान है क्या, जो विदेशी धर्मों से कन्वर्ट होकर के आई हुई आत्माएं होंगी वो कानपुर अंश जरूर छोड़ेंगी, क्या करेंगी, कान में फुर्र करेंगी और अज्ञानता का अंश छोड़ देंगी, एक घड़ा दूध का भरा हुआ हो और उसमें विष की एक बूंद डाल दी जाए तो सारा घड़ा क्या काम करेगा, हैं? अज्ञानता का ही काम करेगा, इसलिए भगवान बाप कहते हैं एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा, और जब विविचारी ज्ञान हो गया तो संकल्प कैसे पैदा होंगे, विविचारी संकल्प पैदा होंगे, संकल्प विकल्प जब विविचारी बनेंगे तो वाइब्रेशन कैसा बनेगा, है जानवरियत का वाइब्रेशन बनेगा या मनन चिंतन मंथन करने वाले ब्रह्मा की औलाद मनु की औलाद मनुष्यों का वाइब्रेशन बनेगा, जानवरों का वाइब्रेशन बनता है, और जानवर तो विविचारी होते ही, इसलिए बाप कहते हैं ये दुनिया कलयुग के अंत में जानवर से भी बदतर हो जाती है, तो बताया कि अभी संगम युग में जब भगवान बाप आया हुआ है तो भारतवासी पक्का भारत को फॉलो करने वाला ब्राह्मण बनना है या कमजोर कुरियों का ब्राह्मण बनना है? क्योंकि आस्तिक कहे जाने वाले 9 ही धर्म हैं दुनिया में मुख्य मुख्य। नंबर वार और उनमें कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण देव आत्माएं भी 9 प्रकार की हैं जो 9 कुरियों में बांटी जाती हैं। तो कौन सा कुरी का ब्राह्मण बनना है? अव्वल नंबर कुरी का ब्राह्मण बनना ही श्रेष्ठ है। लेकिन कच्चे ब्राह्मण डरपाए देते हैं, खुद भी मजबूत रहकर बन करके नहीं रहते, खुद की कमजोरी को त्याग नहीं पाते और दूसरों को भी यही सिखाते हैं। अरे बाप रे, ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, डूब मरोगे। बेसिक ज्ञान में चलने वाले जो भी ब्राह्मण हैं, तथाकथित अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाले, वो भी क्या सिखाते हैं? ज्ञान की गहराइयों में जाना है या नहीं जाना है? क्या सिखाते हैं? नहीं जाना है। ऐसी शिखामणी जो भगवान बाप के ज्ञान का विरोध करता हो, उनके लिए भगवान बाप ने बोला है, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। क्या कहा? श्रीमत क्या कहती है? ज्ञान की गहराई में जाना है, ज्ञान का लेन देन करना है जीवन में ब्राह्मणों को, या कोई दूसरा धंधा अपनाना है? ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ऐसे नहीं कि जो बातें बाप ने, भगवान ने, बेहद के बाप ने मना कर दी, वो ही धंधा करना। भगवान बाप ने कहा, तुम बच्चे रूहानी हॉस्पिटल खोलते हो या जिस्मानी हॉस्पिटल खोलते हो? और उन कच्चे ब्राह्मणों ने क्या करना शुरू कर दिया? जिस्मानी हॉस्पिटल से खोल के बैठ गए। तो उससे पैसे की कमाई होगी या ज्ञान धन की कमाई होगी? है, पैसे की कमाई होगी। क्योंकि मनुष्य तो भूलों का पुतला है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की भूलें तो सबसे होती ही रहती हैं, नहीं होती है? और जिनके द्वारा काम विकार की भूलें होती रहती हैं, वो फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऑपरेशन कराएंगे या नहीं कराएंगे? हैं? और कहीं वो सरेंडर्ड हैंड्स हैं या नबी हैं? तो जिन्होंने उनकी कमजोरी को छुपाया उनके प्रति अर्पण में जीवन बिताएंगे या नहीं बिताएंगे, उनके प्रति मन बुद्धि को अर्पण करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? अर्पण नहीं करेंगे। जिन्होंने उनकी कमजोरी को छुपा लिया हॉस्पिटल में भर्ती करके, तो देखो कितनी बड़ी कमाई होती है हद के धन की। और दुनिया में हद का धन जितना जास्ती बढ़ेगा उतना दुनियावी मान मर्तबा बढ़ेगा या कम होगा, हैं? दुनियावी मान मर्तबा बढ़ेगा। दुनियावी तरीके से घूस दे करके, रिश्वत दे करके, दुनिया के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है, जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, टीवी चैनल्स वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले, इंटरनेट में अच्छे अच्छे काम करने वाले, ये सब दुनियावी व्यक्ति हैं या ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले हैं, हैं? दुनियावी लोग। दुनिया जिस भ्रष्टाचार के रास्ते पर जा रही है उसी रास्ते को अपनाने वाले हैं या ब्राह्मणों के शिष्टाचार को अपनाने वाले हैं, हैं? भ्रष्टाचार को अपनाने वाले, उनको नोटों की गद्दियां देते जाओ, जो कमाई में आती है चाहे जो काम करवा लो। तो देखो बाप कहते हैं भारत के रहने वाले सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनो, भारतवासी। कहाँ के वासी? माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाले ब्राह्मण बनो। पेट के धंधे में रत रहने वाले, पेट का धंधा करने वाले ब्राह्मण नहीं बनना है। बाप तो गारंटी देते हैं कि मैं जो धंधा बताता हूं ईश्वरीय धंधा, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, इस धंधे में जो बिजी रहेंगे वो ऐसे सर्विसेबल बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, गारंटी दी है। दुनिया भूख मरेगी, बड़े बड़े करोड़पति अरोड़पति अरबपति भूख मर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। इस बात को दुनिया के जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, जो अंदरूनी भावना से कविताएं लिखते रहे, उन्होंने भी लिख दिया। सूरदास ने, उद्धव ने, आई ज्ञान की आंधी, संबत 2000 के पीछे ऐसो जोग परे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चाहुदे से काल फिरे। उस समय लोग ईश्वरीय ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, दुनियावी धंधे सब चौपट हो जाएंगे। जैसे भगवान बाप कहते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, और वैसे भी देखने में आता है धंधों में नुकसान होता जा रहा है या फायदा होता जा रहा है? है? नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी दुनिया में जो बड़े बड़े धृतराष्ट्र हैं, धृत माने धरली, राष्ट्र माने धन संपत्ति, दुनिया की सारी धन संपत्ति भ्रष्ट कर्म करके अपनी मुट्ठी में जिन्होंने कर रखी है, वो बड़े बड़े साहूकार गवर्नमेंट को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया, जो गवर्नमेंट दुर्योधन दुशासनों की गवर्नमेंट है। तो बताओ, छोटे मोटे धंधे धोरी वाले गरीब होते जाएंगे या साहूकार बनेंगे? गरीब गरीब होते जा रहे हैं और साहूकार साहूकार बनते जा रहे हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान के कारण हो रहा है या देहधारी धर्म पिताओं धर्म गुरुओं के ज्ञान फैलाए हुए अधूरे ज्ञान के कारण हो रहा है? तो भारतीय परंपरा में शास्त्रों में भगवान के विराट रूप का एक चित्र दिखाते हैं, विराट विश्व रूप दर्शन। बोला भारत में ही विराट स्वरूप का चित्र बन सकता है। ये चित्र और देशों की यादगार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान भारत में ही आता है और भारत में ही आकर के भारतवासियों को ज्ञान की रोशनी में रत रहना सिखाता है। दूसरे देश भौतिक दुनिया का धंधा धोरी जल्दी छोड़ेंगे या भारतवासी भौतिक दुनिया के धंधे जल्दी छोड़ेंगे? हैं? भारतवासी ज्ञान से प्रभावित होकर ईश्वरीय धंधे को अपनाएंगे। विदेशी विधर्मी आत्माएं तो भगवान के असली रूप को जानते ही नहीं, वो तो कहते हैं भगवान निराकार है। अरे हमारी आत्मा भी तो निराकार है, आत्मा बिना शरीर धारण किए कुछ काम कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे ही भगवान भी निराकार है, वो भी जब तक कोई साकार शरीर का धारण न करे तब तक कोई काम नहीं कर सकता, नरक को स्वर्ग नहीं बना सकता। नरक की दुनिया में आकर के स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता और जो नारकीय धंधों को छोड़ते ही नहीं। नारकीय धंधे क्या है? है नारकीय धंधे हैं नरके बनाए हुए धंधे। नर नरक बनाता है और सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला भगवान स्वर्ग बनाता है। नर मनुष्य को कहा जाता है, मनुष्य विकारी होता है, विकारी मनुष्य विकार बढ़ावेंगे या दुनिया को निर्विकारी बनावेंगे? 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या कहती है? धर्म पिताओं ने आकर के विकारों को इस दुनिया में बढ़ावा दिया है या घटाया है? बढ़ावा मिलता रहा। तो भारत में ही भगवान के विश्व रूप दर्शन विराट रूप का चित्र दिखाया जा सकता है, जिसमें साबित होता है कि उस विराट रूप में से जो चोटी के ब्राह्मण थे, जैसे एवरेस्ट चोटी कही जाती है ना, ऊंची से ऊंची स्टेज वाले, उन चोटी के ब्राह्मणों को उड़ाई दिया भक्ति मार्ग के विराट रूप के चित्र में से। कि दिखाया है? अरे चोटी को दिखाया है या नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। और उन ब्राह्मणों की चोटी के बीच जो शिवलिंग बनता है गोल गोल, वो शिव दिखाया है या उसको भी उड़ाई दिया? भक्तों ने क्या किया? शिव को भी उड़ाई दिया। और जिस शिव ने आकर के हम ब्राह्मणों को पवित्र ब्राह्मण बनाया, एवर प्योर, वो एवर प्योरिटी का आगार यादगार शिव का चित्र भी उड़ गया। चोटी उड़ाई जाएगी तो शिव का वो आकार भी उड़ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दुनिया के जो भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण हैं, कम कलाओं वाले देवता बनेंगे, 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बनेंगे। पूरा ज्ञान जो नहीं उठाते हैं, अधूरा ज्ञान उठाते हैं, वो अधूरा ज्ञान उठाने वाले ब्राह्मण चोटी के ब्राह्मण बनेंगे? हैं? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बाप की सूर्यवंशी औलाद नहीं बनेंगे। ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली आत्मा का ज्ञान नहीं सुनेंगे, सुप्रीम सोल का ज्ञान नहीं सुनेंगे। वो किसका आधार ले लेंगे? है? अरे नहीं समझ में आया? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों आंखों के अंधे। कोई राम को भगवान समझ के बैठे हैं, कोई कृष्ण को भगवान समझ के बैठे हैं। ये दोनों ही प्रकार के भक्त अंधे हैं या सोच रहे हैं? हैं? अंधे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि ने साकार को तो पकड़ लिया। जन्म मरण के चक्र में आने वाली भोक्ता आत्मा को तो पकड़ लिया, लेकिन उसमें जो अभोक्ता कार्य करता है उसको भूल जाते। कैसे भूल जाते हैं? भगवान बाप आकर के डोरापा देते हैं, ब्रह्म वाक्यों में ही बोल दिया। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, कोई बाबा माने ब्रह्मा बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। मने साकार के मुरीद बन जाते हैं। देर के देर कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण किसके मुरीद बनते हैं? हैं? साकार राम और कृष्ण के मुरीद बनते हैं। और निराकार बाप, जो बाप सुप्रीम, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसको भूल जाते। अपने अपने अंदर चेकिंग करके देखें, जितना भी देर हम 24 घंटे में याद करते हैं उसमें साकार के चेहरे के साथ साथ निराकार ज्योति बिंदु कितनी देर याद रहता है? और साकार कितना याद आता है? कम से कम निराकार याद आता है या साकार याद आता है? साकार ज्यादा याद आता है और निराकार कम से कम याद आता है। तो बताओ, निराकार जिसमें प्रवेश करता है फाइनल स्वरूप में, वो फाइनल स्वरूप जो भगवान का निराकार प्लस साकार रूप कहा जाता है, जिसमें शिवनेत्र यादगार में दिखाया जाता है, वो कौन सा रूप है? 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 शंकर शिवनेत्र दिखाते हैं, सदाशिव। सदाशिव क्यों कहते हैं? अरे संगम युग में ही प्रवेश करता है कि सदा चारों युगों में प्रवेश करके रहता है?
संगम
में ही, संगम में प्रवेश करके उसे आप समान बनाकर नहीं जाता। अरे आप समान बना के जाता है तो सदा काल हो गया या अल्पकाल हुआ? समझाया भी है, इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम है नहीं, सदाकाल एक शिव बाबा ही है। शिव माने बिंदी, बाबा माने साकार। तो सतयुग त्रेता में तो वो आत्मा रहेगी और देवात्माओं की तरह जो आत्म की स्थिति में स्थित रहेगी, लेकिन द्वापर कलयुग में भी होगी या नहीं होगी? है? होगी। और ज्ञान की बातों में रत रहेगी, लगी रहेगी या ज्ञान की बातों को छोड़ देगी? लगी रहेगी। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। वो किसने लिखी? व्यास प्रसादात, गीता में ही लिखा हुआ है। तो व्यास वाली आत्मा कौन सी आत्मा साबित होती है? है? राम वाली आत्मा न कहो, राम तो फेल हो गया। जो आदि में फेल हुआ वो अंत में भी फेल हो जाता, सारी दुनिया उसे फेल कर देती है।
राम सच है,
राम की आत्मा को यज्ञ के आदि में सारी दुनिया ने फेल कर दिया, सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं ने फेल किया या पास कर दिया? फेल कर दिया। और जो आदि में फेल अंत में भी फेल कहा जाएगा या पास कहा जाएगा? दुनिया ने तो फेल कर दिया आदि में भी, दुनिया ने तो फेल कर दिया। भगवान ने पास किया या फेल कर दिया? पास कर दिया। क्यों? राम फेल नहीं हुआ आदि में। सच्चाई क्या है?
पूरा ज्ञान
ना
होने के बाद
आदि में पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गया। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना, जो आदि सुअंत, तो संगम युग समाप्त होगा और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र अपना शरीर छोड़ देंगे। सोल वर्ल्ड में सभी आत्माएं वापस जाएंगी। उस समय राम वाली आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्यों में से जो अंतिम देहधारी आत्मा होगी उसको संग के रंग से डूबे हुए को गड्ढे में जाकर के ऊपर उठा के लाएगा या नहीं लाएगा? अंतिम 550 करोड़ भी आत्मा उसको भी ऊपर उठा के लाएगा, ऊंची स्टेज में, आत्मिक स्टेज में। क्योंकि दिन ब दिन दुनिया में विकारों की आग बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? है, बढ़ती जाएगी। अभी भी बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगनी, कि कहीं किसी देश में कम हो रही है? है, बढ़ती जाएगी। ऐसी विकारों की धधकती हुई अग्नि के बीच जो अंतिम कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़ों का सुख खींचने का धंधा क्या होता है? नाली में ढेर के ढेर कीड़े मकोड़े कुल बलाते हैं, उनका क्या धंधा होता है? कभी देखा? नहीं देखा? देखा, वो जानते होंगे। ढेर कीड़े कुल बुलाते हैं, एक कीड़ा दूसरे कीड़े को काट लेता है, वो बिल बिलाता है, तो दूसरा कीड़ा दूसरे को काटता है, दूसरा तीसरे को काटता है, तीसरा चौथे को काटता है। जैसे समंदर में, सागर में ढेर की ढेर मछलियां होती हैं, उनकी आदत बनी हुई है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ऐसे ही चलता है उन जीव जंतुओं की दुनिया में। मन बुद्धि का कोई काम चलता है कि नहीं? नहीं चलता। काम इंद्रिय की प्यास ही बढ़ती रहती है। और बाबा ने क्या बोला, सबसे जास्ती दुख देने वाला अंग कौन सा है? काम इंद्रिय। काम जीते जगत जी, इंद्रिय जीते जगत जी। ये तो हम मनुष्य जानते हैं। मनन चिंतन करने के कारण मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं।
जानवर इस बात को जानते हैं? नहीं जानते। वो क्या करते रहेंगे? वो कामेंद्रिय का सुख लेते रहेंगे या बचेंगे? सुख लेते रहेंगे और दूसरों को दुख दे करके लेंगे या बिना दुख दिए भी लेंगे? हैं? भले दूसरों को दुख कितना भी हो लेकिन उन्हें सुख लेना है। तो देखो 500-700 करोड़ भी जो मनुष्य आत्माएं हैं वो कीड़े मकोड़े मिसल हैं। इसलिए भगवान बाप ने वाणी में बताया क्या कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सबसे नीची कोटि के प्राणी हैं। मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े जितनी नीची कोटि की आत्माएं होंगी उतना बाद में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के दुखदाई दुनिया को और दुखदाई बनाती जाती। तो आग के कुंड में धधक रही है, निकलने का उन्हें रास्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मनुष्य सृष्टि के बाप को ही रहम करना पड़ता है। ये विषय विकार रूपी विष है, जो शास्त्रों में मनुष्य सृष्टि के बाप को ही पीना पड़ता है। जिस बाप को कहा जाता है जगत पिता, कोई सच्चा पिता होगा तो अपने परिवार के छोटे मोटे दुदमोहे बच्चे भी अगर आग में जल रहे होंगे तो उनको छोड़ के भाग जाएगा या उनको निकालने का प्रयत्न करेगा? निकालने का प्रयत्न करेगा। अगर निकालता है तो सच्चा है और सिंध हैदराबाद की तरह 7-7 तालों में जिनको बंद करके रखा था अपना बच्चा बना करके, बच्चे के रूप में जन्म देकर पालना दे करके 7-7 तालों में बंद रख किया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून ही ना खेल हुआ तो वो लोग छोड़ के भाग गए, या परवाह की उन बच्चों की? छोड़ के भाग गए। उनको सच्चा पिता कहेंगे या झूठे पिता अवसरवादी थे क्या कहेंगे? हैं? झूठे अवसरवादी, कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। तो ऐसा जो भक्ति मार्ग वाली ढेर की ढेर मनुष्य आत्माएं हैं भारत के, वो आत्माएं ऐसी स्टेज नहीं प्राप्त करती सच्चे बाप की। न प्राप्त करने के कारण उस सच्चे बाप की ग्लानी करती हैं। जिस सच्चे बाप को मंदिरों में शिवलिंग कह के पूजा जाता है। कौन सा लिंग? शिवलिंग। क्यों? शंकर लिंग क्यों नहीं है? क्योंकि शिव की ही आत्मा है जो उस भिखारी तन में प्रवेश करके यज्ञ कुंड से गदकते हुए कुंड से उन बच्चों को बाहर निकालता है। जल रहा हो शरीर आग में और निकाल करके बाहर रख दिया जाए तो कुछ शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? इतना ही नहीं, उस शांति की स्टेज से निकाल करके ऐसे सुख की स्टेज तक भी पहुंचाता है जिसे कहते हैं बाप तुम बच्चों को नैनों पर बिछा कर ले जावेगा ऊंची स्टेज में। क्या सबसे धोखेबाज अंग कौन सा होता है? आंखें। और सबसे जास्ती प्यार की शुरुआत करने वाला अंग कौन सा होता है? आंखें। आंखें श्रेष्ठ बनती हैं तो दुनिया को श्रेष्ठ बना सकती हैं, और आंखें भ्रष्ट और विभिचारी बनती हैं तो दुनिया को विभिचारी बना देती है। इसलिए कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? देहधारियों की दृष्टि से, जिनकी बुद्धि आत्मा मन बुद्धि देह में धरी रहती है। सुख भोगेंगे कोई भी इंद्रिय के द्वारा तो बुद्धि कहां धरी रहेगी? भगवान की याद में रहेगी या देह के अंग की याद में रहेगी? हैं? देह के अंग की याद रहती है। यही कारण है कि अंत समय में पुरुष शरीर छोड़ता है तो सारा जीवन जिस काम इंद्रिय का सुख भोगा है वो इंद्रिय याद आ जाती है। तो अंत मते सोगते स्त्री का जन्म मिल जाता, ऐसे स्त्रियों का होता है, उनको पुरुष का जन्म मिल जाता है। तो देखो स्मृति का, आंखों का, सृष्टि के सुधार में विशेष महत्व है। और विकृति का भी बहुत महत्व है। विकृति में ले जाने वाली जो इंद्रिय है काम इंद्रिय, उस सृष्टि का विनाश भी तेजी से करती है। विविचार की जैसे बाढ़ आ जाती है। विविचार से होता है विनाश। और एवर प्योरिटी से होता है स्थापना। इसलिए एवर प्योर किसको कहा जाए? बिंदी को है, बिंदी को विविचारी और बिंदी को अविविचारी कहेंगे है? नहीं कहेंगे। बिंदु आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे और ऐसे शरीर में प्रवेश करे जो दुनिया का सबसे जास्ती विकारी इंद्रिय का भी सुख भोगने वाला हो और निर्विकारी जो आंख बनती है उस आंख का भी सबसे जास्ती सुख लेने वाला बना हो। आंख तो छोड़ो, आंख से भी दृष्टि से भी ऊंची स्टेज है वाइब्रेशन की।
लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा ने बनवाया, उसमें लक्ष्मी नारायण को ध्यान से देखो जो नरसिंह नारायण बनते हैं, और उनकी रचना राधा कृष्ण को देखो ध्यान से, क्या अंतर है? है राधा कृष्ण आंखों का सुख ले रहे, भले वो आंखों का सुख अब भी विचारी ले रहे, लेकिन इंद्रियों का सुख तो ले रहे हैं। इंद्रियों का सुख लेने से नीचे गिरते हैं, और वाइब्रेशन कोई इंद्रिय नहीं है, देह है, है? देह का अंग नहीं है, मन बुद्धि से वाइब्रेशन बनता है। तो जो नरसिंह नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, वो एक दूसरे को दृष्टि मात्र से भी नहीं देखती, वाइब्रेशन से ही सुख का लेन देन करती हैं, और उस वाइब्रेशन की पावर से ही राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होता है। पपीते का मिसाल दिया है, पपीता नर भी होता है मादा भी होता है, दो मील के दायरे में, दो किलोमीटर के दायरे में मादा वृक्ष को अगर एक भी नर पपीते का वृक्ष मिल जाएगा तो उतनी दूर से ही अपना पराग खींच लेगा और फल धारण करेगा। अगर दो किलोमीटर के दायरे में कोई भी पपीते का वृक्ष नहीं है नर, तो कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, पपीते का फल ही नहीं लगेगा। आज की दुनिया में भी ऐसा मिसाल देखने में आता है। उदाहरण देने के लिए तो देखो, ऐसी ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करने वाले नर नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं, ब्राह्मण चोटी हुई या नहीं हुई? ब्राह्मणों की दुनिया में जो देवता बनने वाले हैं उनमें चोटी का पुरुषार्थ करने वाली है या नहीं? ऐसी चोटी का पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को उन कन्वर्ट होने वाले भक्ति मार्ग के ब्राह्मणों ने, कम कुरियों में जाने वाले ब्राह्मणों ने विराट रूप के चित्र में से ही उड़ा दिया, चोटी को भी उड़ा दिया, और लिंग का पार्ट बजाने वाली आत्मा को लिंग रूप से भी उड़ा दिया। न लिंग रहा, न उसमें बिंदु रहा निराकार का यादगार, तो क्या होगा? है विराट रूप कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? है इनकम्प्लीट है। और द्वापर युग के आदि में भी हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ, उन विधर्मियों ने, उन आक्रांताओं ने, उन हिंसावादियों ने भारत के ऊपर आक्रमण कर करके शिवलिंग की यादगार थी, सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर उसको तोड़ दिया और निराकार की यादगार हीरे को निकाल के ले गया। पत्थर को तो वो समझ नहीं सके कि ये साकार की यादगार है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर में जो मुख्य स्थान पर है देवताओं के बीच में शंकर की मूर्ति रखी हुई थी जिसमें शिव नेत्र दिखाया जाता है। उस मूर्ति को मस्तक से तोड़ करके और अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर उल्टा डाल दिया। इतनी साकार से घृणा, चढ़ते समय भी पांव मार करके चढ़ता था, जूते की ठोकर मारकर, और उतरते समय भी जूते की ठोकर मार करके नीचे आता था। तो देखो ये सब बातें अच्छी तरह से मनन चिंतन मंथन करने की हैं। ओम शांति।